अरमान के कमरे मत जाओ, नानी माँ ने पूरी तरह से भावुक होते हुए कहा और फिर आगे बोली, बच्चे राखी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, खुद को संभाल बेटी और अपने सुमित भैया को, आकाश टाइगर इनको राखी बांध दो बच्ची, अब आगे और वैसे भी गोरी बिटिया, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, अगर ऊपर वाले ने ये दिन दिखाया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, तो फ़िक्र मत कर, हम कान्हा जी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसकी माफ़ी मांग लेंगे, फिर देखना बेटा कान्हा जी सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देंगे। नानी माँ की इस तरह समझाने पर आस्था ने सहमति में सिर हिलाया और अपने आंसुओं को साफ करते हुए हल्की नाराज़गी से बोली, लेकिन नानी माँ हम कान्हा जी से कोई बात ही नहीं करेंगे, कान्हा जी को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिरकार कान्हा जी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखना अब हम उनसे अब कितना ज़्यादा झगड़ा करेंगे। आस्था बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी, उसकी शिकायत सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग नम आँखों के साथ हल्का सा मुस्कुरा दिए। नानी माँ ने आस्था को एक बार फिर से गले से लगाया और तुरंत नौकर को कुछ इशारा किया कि वो जाकर राखी की थाली लेकर आए। वहीं सुमित और आकाश अपने अपने सर पर एक रुमाल बांधकर बैठ गए। तभी नानी माँ ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में किसी को पुकारा, अरे रामू कहाँ हो भाई, जाकर थाली लेकर आओ। जैसे ही नानी माँ ने रामू कहकर वीर को आवाज़ लगाई, वीर बाहर की ओर भागा। असल में कुछ वक्त पहले नानी माँ ने वीर का निकनेम रामू रख दिया था। वो नटखट अंदाज में बातें बनाते हुए बोली, बेटा घर के नौकरों पर ना वीर नाम सूट नहीं करता, इसीलिए हम तुम्हें दूसरा नाम दे देते हैं, अब से हम तुम्हें रामू बुलाएंगे, ठीक है रामू बेटा, अब जाकर थाली लेकर आओ। अब तक आस्था ने वीर को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वीर थाली लेकर वहां आया, नानी माँ ने आस्था को इशारा किया, लो बेटा रामू से थाली ले लो और काम शुरू करो। आस्था ने सिर हिलाया और जैसे ही पीछे मुड़कर थाली लिए नौकर को देखा, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आश्चर्य से उसे देखा। आस्था हैरान होकर, वीर रायचंद ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे और वसुंधरा को तो अरमान जी ने फॉर्म हाउस में रखा था ना। अब जैसे ही आस्था ने इतनी उलझी हुई आवाज़ में ये सवाल पूछा, तो वैसे ही सब लोग एक दूसरे की ओर चुपके से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अरमान वाली बात तो आस्था को बता दी थी, लेकिन वीर वसुंधरा वाली बात वो आस्था को बता ही नहीं पाए थे। वहीं आस्था को अपने सामने देखकर वीर का मन खुशी से झूम उठा था। उसने एक्साइटेड होकर सोचा, वीर खुश होकर, वाकई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, क्या हुआ अगर इन चारों लड़कियों ने मुझे राखी बांध दी तो। लेकिन सच तो यही है, जो लड़की मुझे पहली नज़र में भाग गई थी वो तो आस्था अरमान सिंघानिया है, और अब वो मेरी आंखों के सामने मौजूद है। अब मैं इसी घर में रहकर अरमान सिंघानिया को वो चोट दूंगा जिसके बारे में वो सपने में भी सोच नहीं सकेगा। कहीं ना कहीं वीर गहरी नज़रों से आस्था को देखते हुए यही सब सोच रहा था। वहीं नानी माँ वीर की नज़रों को भांपते हुए उसे डांट कर बोली, तू जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर, फैमिली का फंक्शन चल रहा है, तेरा इस तरह से यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जा यहाँ से। इतना बोलकर नानी माँ ने वीर को आंखों के इशारे वहाँ से भगा दिया। आस्था को अपनी नज़रों में बसाने के बाद वीर मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक उसी वक्त आस्था के सवाल सुनते ही अभिमान जी वहाँ आ गए। कुछ देर पहले अरमान के बेहोश होने के बाद वो अपने आप को काफी कसूरवार मान रहे थे, उनका बीपी गिर चुका था, इसीलिए सबने उन्हें आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस कमरे से बाहर आए तो अनजाने में उन्होंने आस्था के सवाल सुने, और इसीलिए अब वो जवाब देने के लिए आगे बढ़े। अभिमान जी धीमे स्वर में, आस्था बेटा मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, ये बोलते हुए अभिमान जी ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। वीर का उनके बेटा होने का सच और वसुंधरा की पूरी कहानी, सारी सच्चाई उन्होंने आस्था को बता दी थी। सच्चाई जानकर आस्था ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर गुस्से के भाव छुपाते हुए वो खामोश रही। अब जाकर उसे समझ आया कि शायद वो वीर और वसुंधरा को घर में बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए अरमान ने उसे ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन आस्था को ये नहीं पता था कि असल वजह ब्लैक डेविल था, जिसकी वजह से अरमान ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा था। फिलहाल आस्था ने इतना ही समझा कि शायद वीर और वसुंधरा की वजह से ही अरमान ने उसे अपने से दूर किया था। आस्था ने आंखें बंद की, आह भरते हुए खुद के इमोशंस को संभाला। उसने अभिमान जी की आंखों में ढेर सारा दर्द और बेचैनी देख ली थी। उसने उनका हाथ थामकर शांत स्वर में कहा, परेशान मत होइए पापा, अगर किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तब नानी माँ तुरंत सिचुएशन संभालते हुए बोली, बेटा ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए सबसे पहले अपने भाइयों को राखी बांधो। नानी माँ की बात सुनकर अगले ही पल आस्था ने पलके झपकाते हुए हामी भरी और आगे बढ़ी। उसने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और जल्दी ही आकाश और सुमित को राखी बांध दी। फिर वो एक राखी लेकर सीधे टाइगर के सामने खड़ी हो गई। बिना कुछ कहे उसने तुरंत उसका हाथ आगे किया और राखी बांध दी। टाइगर ने आस्था को कोई जवाब नहीं दिया, वो केवल इतना ही बोला, क्वीन आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने किंग पर हाथ उठाया है और शायद किंग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी चेतावनी सुनते ही अगले ही पल आस्था ने कंधे उचकाए और लाल आंखों से उसे देखा, फिर हल्की सी स्माइल करते हुए बोली,
टाइगर भैया, आपकी किंग कब क्या करेंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वैसे भी हमें पता है जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आस्था की ये बात सुनकर एक पल के लिए टाइगर के दिल में गहरा दर्द उठा, लेकिन वो अपने इमोशंस आस्था को दिखा नहीं पाया और सिर्फ शांत नजरों से उसे देखता रहा। इसके बाद आकाश और सुमित आस्था के पास आकर खड़े हो गए। आकाश और सुमित हल्की सी स्माइल के साथ, अभी तो फिलहाल हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम तुम्हें एक वचन जरूर देते हैं। जिसने भी तुम्हारी जिंदगी के साथ ऐसी घटिया चाल चली है और तुम्हारे पति की ये हालत की है, हम वादा करते हैं बहुत जल्द उसे तुम्हारे कदमों में लाकर झुका देंगे। ये सुनकर आस्था ने नम आंखों के साथ हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो नानी माँ के पास चली गई। तब नानी माँ ने उसे प्यार से थपकी देकर कहा, एक काम कर, तू जाकर थोड़ी देर आराम कर, फिर देखते हैं क्या करना है। ये सुनकर आस्था ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। आस्था की आंखों ने उसके दिल का हाल बयां कर दिया, क्योंकि आस्था को वाकई आराम की जरूरत थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका दिल भी थकावट और भारीपन महसूस कर रहा था। उसका शरीर गिरा गिरा सा हो रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि उसे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगी, तभी नानी माँ ने आस्था को अचानक से रोक दिया और लड़खड़ाती हुई आवाज में उससे बोली, गोरी बिटिया, तुम अरमान के कमरे में मत जाओ। अगर तुम वहाँ गई और दामाद जी ने तुम्हें वहाँ देख लिया तो वो इस बात का काफी बड़ा तमाशा बना सकते हैं। बेटा, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो, और अंश बच्चा भी सो गया है, तब तक मैं भी उसे कमरे में ले जाती हूँ। नानी माँ के शब्द किसी धमाके की तरह थे, जिसे सुनकर आस्था सीढ़ियों पर खड़ी होकर एक बार फिर काफी ज्यादा उदास हो गई थी।
अब वो नानी माँ को क्या बताती कि किस तरह वो पिछले 15 दिनों से अपने पति के साथ ही साथ अपने प्यारे से कमरे को देखने के लिए कितना तरस रही थी। कहीं ना कहीं रश्मि आस्था के मन की उथल पुथल समझी चुकी थी, इसीलिए जल्दी से वो सिचुएशन संभालते हुए बोली, अभी तो अरमान 2 से 3 घंटे तक नींद से नहीं जागेगा, फिलहाल वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा। जैसा कि ध्रुव ने बताया है, उसने उसे नींद की दवाई दी है, जिसकी वजह से वो अभी रेस्ट पर है। तो तब तक आस्था, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ये कहते हुए उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाई। तब आस्था ने आंखों ही आंखों में इशारे से रश्मि का शुक्रिया अदा किया था और बोझिल मन से अपने कमरे की ओर जाने लगी थी। और अब जैसे ही वो अपने कमरे में आई, तो वैसे ही उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी, क्योंकि एक बार फिर अरमान के कमरे का एनवायरनमेंट ब्लैक एंड डार्क हो चुका था। उसे पूरी तरह से डार्क फीलिंग आ रही थी। लेकिन आस्था को इस बात का ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था। वो समझ चुकी थी कि अगर उसका पति वापस से डेविल रूप में लौट आया है, तो ये आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन एक बार फिर अपने कमरे को पुराने रूप में देखकर आस्था अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रही थी। वो अपनी अलमारी को खोलकर देख रही थी, जहां पर कभी उसके कपड़े हुआ करते थे। उनकी बड़ी सी फोटो, जो कि अरमान ने बेड के पीछे की साइड पूरी की पूरी दीवार पर लगवाई थी, जिसमें आस्था खूबसूरत लग रही थी। इतना ही नहीं, उस कमरे में लास्ट टाइम उसने रौनक की गोद भराई में कितनी मौज मस्तियां की थी। उसकी आंखों के सामने वही सारे दृश्य एक फिर मंडराने लगे, और आस्था जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा और दुखी होकर वो रोने लगती। कितनी ही देर तक वो बेड के कोने को पकड़कर वहीं बैठकर रोती रही। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आस्था के कमरे में जाने के बाद सभी लड़कियां काफी हद तक शांत सी हो गई थीं। तब सुमित और आकाश आए और वंशिका और रौनक के सिर पर हाथ रखकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों भी हमें राखी बांध सकते हैं। रश्मि ने भी सुमित को राखी बांध दी थी। फिलहाल हंसी खुशी के माहौल में सबका मूड ठीक करने के बाद दादाजी ने अब सभी को आराम करने के लिए कह दिया गया था। वहीं तभी आहान ने थोड़ा क्यूरियोसिटी से ध्रुव से सवाल किया, एक बात बता, तू अरमान भाई को ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता कि जिसकी वजह से वो पूरी रात सोते रहे? क्योंकि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और आज मैं रौनक को लेकर अपने साथ सोऊंगा। वैसे भी यार, जब से मेरी शादी हुई है तब से रौनक के बिना मुझे नींद नहीं आती। तब ध्रुव आहान के सर पर चपेट लगाकर फटाक से बोलता है, अबे मैं अरमान भाई को ऐसा वैसा कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैंने जो उन्हें नींद दवाई दी है वो केवल कुछ ही घंटे तक गहरी में सोते रहेंगे। और जैसा कि तुम जानते हो, हमारे अरमान भाई को आराम करने की बिल्कुल आदत नहीं, और वो कब किस समय उठ जाए इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, तो इसीलिए केयरफुल होकर सोना। ये बोलते हुए ध्रुव आहान को कश्मकश में छोड़कर वहां से चला गया था। कहीं ना कहीं ध्रुव की इस तरह की बात सुनकर आहान और बाकी सब थोड़े से अनकंफर्टेबल भी हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा उन्हें बिल्कुल भी टाइम समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक अरमान गहरी नींद में सो रहा है, तब तक उतना टाइम तो वो अपने अपने पार्टनर के साथ बिता ही सकते हैं। तो ये सोचकर सुमित के साथ राधिका और आकाश के साथ रश्मि, ध्रुव के साथ वंशिका और आहान रौनक को लेकर जल्दी ही अपने अपने कमरे में चले गए थे। वहीं दादाजी ने अभिमान जी को भी आराम करने के लिए कह दिया और उन्हें समझाते हुए धीमे स्वर में बोले,
बेटा, अब जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी फिलहाल सबको आराम करना चाहिए। वैसे भी आज घर में काफी हद ड्रामा हो गया है, तो सब जाओ, जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो।